यूनिट एक पाठ चार शिक्षा प्रशासन की प्रकृति नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन शिक्षा प्रशासन के प्रकार कारक एवं समस्याएं। इस अध्याय के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इन सिद्धांतों के विश्लेषण से शिक्षा प्रशासन की प्रकृति का बोध होता है, परंतु कोई सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं निकलता है। शिक्षा प्रशासन का स्वरूप बदलता रहता है। प्रजातांत्रिक शासन के अंतर्गत शिक्षा प्रशासन का रूप भी इसी के संदर्भ में सार्थक प्रतीत होता है। इस अध्याय में शैक्षिक प्रशासन की विकास प्रकृति आवश्यकता एवं उपयोगिता का वर्णन किया गया है। शिक्षा प्रशासन की प्रकृति एवं प्रकार टाइप्स एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रूक एडम्स ने कहा है, शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन प्रायः परस्पर विरोधी तथा सामाजिक शक्तियों को एक ही लड़ी में इतनी चतुराई से जोड़ता है कि वे सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज द कैपेसिटी टू कोऑर्डिनेट मेनी एंड ऑफन कंफ्लिक्टिंग सोशल एनर्जीज इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म सो जॉइंटली दैट दे शैल ऑपरेट यूनिटी। इस मंतव्य के अनुसार शिक्षा प्रशासन एक क्षमता है। यह क्षमता जितनी प्रभावशाली होगी उतनी ही प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। H.R. डगलस के अनुसार विद्यालय समाज का अंग होता है, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था समाज के अनुरूप होती है। सामाजिक संरचना तथा शासन के अनुसार शिक्षा प्रशासन भी होता है। आज का विश्व स्वतंत्र तथा प्रजातंत्र में विभक्त है, अतः शिक्षा प्रशासन भी इसी प्रकार एक तंत्रात्मक या एक तंत्र तथा प्रजातंत्रात्मक रूप में विभक्त है। एक तंत्र शैक्षिक प्रशासन टोटलाइजेटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन। एक तंत्र शासन में सत्ता एक व्यक्ति या एक समूह के अधीन होती है। यह व्यक्ति एक समूह या समाज के लक्ष्य निर्धारित करता है और अन्य सामाजिक लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह व्यवस्था एक तंत्रात्मक शैक्षिक प्रशासन द्वारा होती है। इस व्यवस्था में समाज तथा उनके सभी व्यक्तियों के ऊपर ऐसे व्यक्ति अथवा समूह की सत्ता सर्वोपरि होती है। एक तंत्रात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा उत्तम का सृजन होता है और इससे समाज की भौतिक समृद्धि होती है। लेनिन के शब्दों में, हम किसी भी प्रकार की उस नैतिकता को स्वीकार नहीं करते जो गैर मानवीय नॉन ह्यूमन तथा गैर वर्ग नॉन क्लास की अवधारणा के घेरे में नहीं आती। ऐसे नैतिकता धोखा है। एक तंत्र या शिक्षा प्रशासन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। एक तंत्रवाद के अनुसार सामान्य व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा नागरिकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क एवं सार्वभौमिक होनी चाहिए। इससे सभी को समान संस्कृति की शिक्षा प्राप्त होगी। दूसरा, सामान्य संस्कृति एवं सामाजिक एकता। शिक्षा का उद्देश्य सामान्य संस्कृति के प्रसार तथा सामाजिक एकता के लक्ष्य की प्राप्ति है, इसलिए शिक्षा पर पूर्णतः राज्य का नियंत्रण होता है। सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का संबंध विद्यालयों तथा शिक्षा व्यवस्था से होता है। तीसरा, पूर्व विद्यालयी शिक्षा पर बल। एक तंत्र शिक्षा प्रशासन सामान्य संस्कृति तथा सामाजिक एकता के संस्कार विकसित करने के लिए पूर्व विद्यालयी शिक्षा पर बल देता है। सर्व काल से ही उनमें राज्य के शैक्षिक विचारों से नए समाज के मूल्यों को विकसित किया जाता है। चौथा, विद्यालय तथा सामुदायिक जीवन। एक तंत्र समाज व्यवस्था में विद्यालय समुदाय का लघु रूप होता है। वह समुदाय की समस्त आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला होता है। बालक को श्रम निष्ठ बनाया जाता है और उसे समाज के उपयोगी अंग के रूप में विकसित किया जाता है। एक तंत्र में भौतिक। एक तंत्र व्यवस्था में शिक्षा केवल भौतिक विकास के लिए होती है। आध्यात्मिक, धार्मिक तथा निरपेक्ष मूल्यों के विकास के लिए इस शैक्षिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होता। श्रम, प्रकृति तथा समाज शिक्षा के विषय होते हैं। छठवां, पूर्व केंद्रित शैक्षिक प्रशासन। एक तंत्र व्यवस्था में शैक्षिक प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होता है। केंद्र सरकार के पास शिक्षा संबंधी कानून बनाने, नियम उपनियम का निर्माण करने तथा विद्यालयों की स्थापना करने के समस्त अधिकार होते हैं। कर्मचारियों की नियुक्तियाँ, सेवा समाप्ति, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्य पुस्तकों की रचना एवं उत्पादन आदि राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। सातवां, शिक्षा पर राज्य का एक अधिकार है। शिक्षा राज्य द्वारा संचालित तथा नियंत्रित होती है। सरकार का शैक्षिक अधिकार सर्वोपरि है। सभी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना, व्यवस्था तथा नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था में निजी प्रबंध का कोई स्थान नहीं होता है। आठवां, समान स्तर का निर्धारण, एक तंत्र व्यवस्था शैक्षिक स्तर का निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्माण आदि राज्य द्वारा निर्धारित होती है। आई एल कैंडल के शब्दों में, शैक्षिक दृष्टि से केंद्रीय शैक्षिक प्रशासन में समानता पाई जाती है, आने वाली पीढ़ी को वांछित दिशा में मोड़ा जाता है, इसमें निर्देशीकरण पाया जाता है। फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन सीक टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी एंड टू मोल्ड द राइजिंग जनरेशन अकॉर्डिंग टू अ प्री कंसीव्ड पैटर्न, इट्स मेथड्स आर दोज ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। नौवां, समान संरचना, पाठ्यक्रम विधियों तथा परीक्षा के स्तर के नियंत्रण द्वारा समानता लाने का प्रयास किया जाता है। नौकर सही तंत्र कानून नियमों उप नियमों द्वारा समान संरचना पर नियंत्रण करता है। कर्मचारी समूह यह देखता है कि राज्य की नीतियों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। शिक्षक केंद्रीय सत्ता के केंद्र रूप में कार्य करता है। दसवां, परिवर्तन का विरोधी, एक तंत्र व्यवस्था में शैक्षिक प्रशासन निर्धारित कार्यक्रम की पूर्ति के लिए परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होती है तो उसका निर्धारण ऊपर से होता है। शिक्षा कर्मचारी राज्य की इच्छा का परिपालन करते हैं। एक तंत्र शैक्षिक प्रशासन एक व्यक्ति या वर्ग की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस व्यवस्था के गुण दोष इस प्रकार है। एक तंत्र शैक्षिक प्रशासन के विशेषताएं, एक तंत्र समाज में शिक्षा समाज के विकास के लिए अनिवार्य तत्व है। इस समाज में शिक्षा प्रशासन के गुण इस प्रकार है। पहला, एक तंत्र समाज में सामाजिक न्याय सर्वोपरि होता है। दूसरा, इस व्यवस्था में संपदा का विभाजन कुशलता के आधार पर जन कल्याण हेतु किया जाता है। तीसरा, एक तंत्र व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, इसलिए सामाजिक एकता पाई जाती है। चौथा, सामूहिक क्रियाओं से सहकारी भावना का विकास होता है। पांचवा, सहकारिता शिक्षा व्यवस्था को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाती है। छठवां, शिक्षा समुदाय से संबंधित होती है, इसके बालक स्वयं को समुदाय का अंग समझते हैं। सातवां, शिक्षा आर्थिक उत्पादन तथा सामाजिक कुशलता पर बल देती है। आठवां, शारीरिक श्रम तथा उत्पादन कार्य व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। एक तंत्र व्यवस्था के दोष एवं सीमाएं, एक तंत्र समाज में कुछ दोष भी हैं। इन दोषों का प्रभाव शिक्षा प्रशासन पर किस प्रकार पड़ता है? पहला, एक तंत्र व्यवस्था में व्यक्तिता समाप्त हो जाती है। दूसरा, समरूपता के बजाय समानता पर बल दिया जाता है। तीसरा, समानता का अर्थ एक जैसा नहीं है, इसलिए श्रम की स्थिति रहती है। चौथा, एक तंत्र व्यवस्था में बाह्य दबाव अधिक होते हैं। पांचवा, उपदेशीयकरण की अधिकता होती है। छठवां, भौतिकता को प्राथमिकता दी जाती है। सातवां, आध्यात्मिक धार्मिक तथा नैतिक भावनाओं की अपेक्षा होती है। प्रजातंत्रात्मक शिक्षा प्रशासन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक तंत्र व्यवस्था के विपरीत विश्व में प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था पाई जाती है। प्रजातंत्र सरकार तथा व्यक्ति के संबंध मात्र नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। यह राष्ट्र के भौतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर नियंत्रण करती है। प्रजातंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। प्रजातंत्र जाति, धर्म तथा यौन से परे वर्गहीन समाज की कल्पना करता है, जिसमें विकास के समान अवसर होते हैं। प्रजातंत्र सामूहिक जीवन में विश्वास करता है। प्रजातंत्र सदा परिवर्तन में विश्वास करता है। प्रजातंत्र में जीवन के आदर्शों को व्यावहारिक जीवन में अपनाने पर बल दिया जाता है। प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शैक्षिक प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, अनिवार्य निःशुल्क एवं सार्वभौम शिक्षा। प्रजातंत्र का मूल आधार नागरिक चेतना है, अतः प्रजातंत्र में नागरिक चेतना के विकास के लिए भावी नागरिकों को अनिवार्य निःशुल्क एवं सार्वभौम व्यवस्था की जाती है। लास्की के शब्दों में, निर्धारित सीमा से ऊपर अनेक जा सकते हैं, पर इससे नीचे कोई नहीं जा सकता है। दूसरा, शैक्षिक व्यवस्थाओं की समानता, प्रत्येक व्यक्ति के कतिपय विशेषताओं का होना भी आवश्यक तत्व है, इसलिए प्रजातंत्र में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाए। प्रतिभाशाली तथा पिछड़े छात्रों को उनकी योग्यता तथा क्षमता के अनुरूप शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरा, शिक्षा अधिकरणों का सहयोग, शिक्षा के अलावा अन्य शेष अधिकरणों का सहयोग शैक्षिक साधनों को प्राप्त होता है। बालक के विकास में परिवार तथा विद्यालय दोनों अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। साथ ही राज्य, समुदाय, अनौपचारिक अभिप्रेरणा भी अपना योगदान बालक की शिक्षा के लिए देते हैं। चौथा, बालक की स्वतंत्रता, प्रजातंत्र व्यक्ति के विकास के लिए प्रयत्नशील होता है, अतः वह समाज कल्याण की दिशा में कार्य करता है। इसलिए प्रयत्न किया जाता है कि बालक अपनी स्वाधीनता का पूरा पूरा शिक्षा प्रशासन उपयोग करे। बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। पांचवा, शिक्षा की व्यावसायिक स्वतंत्रता। प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में शिक्षक पुलिस की भूमिका अदा नहीं करता, वह एक कुशल माली की भूमिका का निर्वाह करता है जो उन्हें नन्हे तथा कोमल पौधों का विकास करता है। वह बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा विधियां अपनाने में स्वतंत्र है। छठवां, शिक्षा के व्यक्तित्व तथा सामाजिक संदर्भ। प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में शिक्षा के व्यक्तिगत तथा सामाजिक संदर्भ होते हैं। सर्वहार प्रशासन में व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता, जबकि प्रजातांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्ति का महत्व अत्यधिक है। प्रजातंत्र में व्यक्ति तथा समाज दोनों पारस्परिक सहयोग से स्वस्थ व्यवस्था को जन्म देते हैं। सातवां, शिक्षा का आधार सामाजिक संस्कृति। प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में सामाजिक संस्कृति को शिक्षा का आधार माना जाता है। प्रजातंत्र में संस्कृति एक गतिशील तत्व है, इसका प्रभाव बालकों के मस्तिष्कों पर पड़ता है। आठवां, आध्यात्मिक महत्व। प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन शिक्षा में आध्यात्मिकता में महत्व को स्वीकार करता है। जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, अपितु यह उच्चतम मानव मूल्यों के विकास के लिए भी है। नवा, नमनीयत शिक्षा प्रशासन। प्रजातंत्र यह मानता है कि स्थानीय समुदाय को शिक्षा संबंधी आत्मनिर्णय लेने का अधिकार होता है, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था विकेंद्रीय होती है, इसलिए शिक्षा में व्यवहारिक तथा आयाम अभिगम अपनाया जाता है। कैंडल के शब्दों में, राज्य का कार्य सहायता परामर्श प्रोत्साहन तथा पुनर्बलन देकर शिक्षा को आगे बढ़ाना है। प्रजातांत्रिक प्रशासन के विशेषताएं। प्रजातांत्रिक प्रशासन में व्यक्ति का महत्व राष्ट्र के लिए होता है, इसलिए व्यक्ति के विकास के लिए शैक्षिक प्रशासन क्रियाशील रहता है। प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन के गुण इस प्रकार हैं। प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। दूसरा, प्रजातांत्रिक प्रशासन समरूपता तथा प्रभावीकरण का विरोधी है, यह व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व देता है। तीसरा, प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में आंतरिक विकास पर बल दिया जाता है। चौथा, इस प्रशासन में सामाजिक दायित्व को विकसित किया जाता है। पांचवा, व्यक्ति संस्कृति हस्तांतरण में सहयोग देता है। छठवां, यह जीवन शैली का विकास करती है। सातवां, विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाता है। आठवां, शैक्षिक प्रशासन व्यक्ति एवं समाज में संतुलन उत्पन्न करता है। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित तथा प्रभावशाली बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा शिक्षा उद्देश्य तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसकी प्रकृति की व्यवस्था करते हुए S.N. मुखर्जी ने कहा है कि शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। व्यक्तियों के साथ साथ मिलकर उत्तम कार्य करने से इसका महत्व है। इसका संबंध पदार्थ से कम, मनुष्य से अधिक है। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति इस प्रकार है। पहला, दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेश में संपन्न होने वाली मानवीय क्रिया के रूप में शैक्षिक प्रशासन गतिशील होता है। दूसरा, बालक के जीवन के समग्र पक्षों से शिक्षा प्रशासन का संबंध होता है। तीसरा, शिक्षा प्रशासन मानव व्यक्तित्व को वांछित दिशा में मोड़ता है। चौथा, शिक्षा प्रशासन भौतिक संसाधनों की व्यवस्था तथा नियंत्रण द्वारा मानव व्यवहार को वांछित दिशा में मोड़ता है। पांचवा, शिक्षा प्रशासन व्यक्ति में अंतःदृष्टि का विकास करता है। छठवां, शोध तथा विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संभावनाओं के कारण इसमें सुनिश्चित तथा उपयोगिता का समावेश अधिक होता है। सातवां, शैक्षिक प्रशासन में व्यक्तियात्मकता डायनामिक पाई जाती है, देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। आठवां, योग्य प्रतिभावान तथा कुशल शिक्षकों के प्रशासन में भाग लेने तथा सहभागिता के आधार पर अधिकार मांगने के अवसर मिलते हैं। फलत शिक्षक राष्ट्रहित में निडर होकर अपनी बात कहते हैं। नौवां, शिक्षा प्रशासन सामाजिक गतिशीलता तथा सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। दसवां, शिक्षा प्रशासन पूर्वग्रह रहित, स्वच्छ तथा निष्पक्ष होना चाहिए। ग्यारहवां, शिक्षा प्रशासन में सहयोग, सहानुभूति तथा सद्भाव होने चाहिए। बारहवां, शिक्षा प्रशासन में मार्गदर्शन तथा परामर्श का लाभ उठाना जाना चाहिए। तेरहवां, शिक्षा प्रशासन परिणाम उन्मुख यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। चौदहवां, शिक्षा प्रशासन में केंद्रीय तथा विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जानी चाहिए। शिक्षा प्रशासन वास्तव में यह प्रक्रिया है जिसकी सफलता से राष्ट्र का निर्माण होता है और असफलता से राष्ट्र तथा नई पीढ़ी का विकास होना संभव नहीं है। इसके संभावित समन्वित विकास की ओर यथोचित ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा प्रशासन के कारक, सेक्टर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। कैंडल के शब्दों में, किसी भी देश का शैक्षिक प्रशासन उस देश के राज्य संबंधी सिद्धांत तथा शिक्षा दर्शन एवं सिद्धांतों से प्रभावित होता है। एकात्मक राज्य में शैक्षिक प्रशासन पूर्व केंद्रित होता है। शीर्षस्थ व्यक्तियों में समस्त शक्ति तथा सत्ता केंद्रित होती है। प्रजातांत्रिक देश में सत्ता तथा शक्ति विकेंद्रित होती है। भारत जैसे देश में शिक्षा राज्य का विषय है, अतः यहाँ पर राज्य शैक्षिक प्रशासन में परामर्शदाता का दायित्व निभाती है। शैक्षिक व्यवहार की पहचान रेमशियर ने इस क्षेत्र में की है। उद्देश्य निर्धारण, नीति निर्माण, भूमिका निर्धारण, प्रशासन कार्य तथा संरचना में समन्वय, समुदाय के साथ कार्य करना, सामुदायिक स्रोतों का प्रयोग, व्यक्तियों को साथ लगाना, संचार एवं मूल्यांकन, यह सभी प्रशासनिक व्यवहार दो प्रकार के घटकों या कारकों को जन्म देते हैं, पहला व्यक्तिगत तथा दूसरा वातावरणीय। शिक्षा प्रशासन के व्यक्तिगत कारक पर्सनल फैक्टर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन के व्यक्तिगत कारकों में शैक्षिक प्रशासनिक व्यवहार का निर्धारण करने में पहला प्रशासक, दूसरा सहयोगी, तीसरा छात्र, चौथा इनके पारस्परिक संबंध, पांचवा संस्थागत संगठन संरचना तथा प्रक्रिया तथा छठवां कर्मचारियों के सांस्कृतिक परिवेशक का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रशासक इन सभी में सर्वोपरि है। उसके कार्य तथा अपने सहयोगियों तथा विषय अर्थात छात्रों के मध्य समन्वय करना पड़ता है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत कारक यानी कि पर्सनल फैक्टर इस प्रकार हैं। पहला अभिवृत्ति एटीट्यूड। शैक्षिक कार्यक्रम की सफलता प्रशासक, शिक्षक तथा समूह के अन्य सदस्यों के मूल्यों यानी कि वैल्यूज, विश्वास यानी कि बिलीफ, मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, आदत यानी कि हैबिट्स, प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन पर निर्भर करती है। रेम शेयर के अनुसार व्यवहार के सशक्त निर्धारणों में व्यक्ति की जानकारी के प्रति समझ, अवधारणा, अपने तथा समर्थकों के प्रति मनोवृत्ति का विशेष महत्व है। कुशल शैक्षिक नेतृत्व कर्मचारियों के व्यवहार में मूल्यों तथा मनोवृत्तियों के द्वारा परिवर्तन करता है। ये मनोवृत्तियाँ विशेष महत्व की पहचान है। क शिक्षा के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। यदि शिक्षा का उद्देश्य मात्र ज्ञान प्रदान करना है तो इससे स्मृति पर ही बल दिया जाएगा। ख प्रशासन का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा प्रशासन की प्रति प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण भिन्न होता है। इसका मुख्य कार्य छात्रों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को निर्देश देना है। विद्यालय के आकार पर भी उद्देश्य निर्भर करता है। शिक्षा प्रशासन को विचारक भी होना चाहिए जो शिक्षा के सिद्धांत तथा व्यवहार के विषय में चिंतन भी कर सके। ग सहयोग कोऑपरेशन। प्रशासकीय प्रक्रिया पर कर्मचारियों का सहयोग निर्भर करता है। कर्मचारी अपने अधिकारियों से निर्देश लेते हैं अथवा समूह के कार्य तथा निर्णयों से प्रभावित हैं। इस तथ्य से वांछित सहयोग प्राप्त करने में सहायता मिलती है। घ सत्ता अथॉरिटी। यदि सत्ता सरकार या राज्य में केंद्रित है तो उसके सादृश्य ही प्रशासक का व्यवहार निर्भर करता है। प्रशासक शासकीय आदेशों के अनुपालन में लगे रहते हैं। उनकी अपनी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। प्रभावशाली प्रशासक विचार, संवेद, आवश्यकता, कार्य तथा कर्मचारियों की क्षमता को ध्यान में रखते हैं। प्रजातंत्र में सत्ता एवं शक्ति समूह में निहित होते हैं। च समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। संकीर्ण, कठोर तथा उदार सभी प्रकार के प्रशासक होते हैं। इनकी अपनी आदत के अनुसार शिक्षा का प्रशासन संचालित होता है। रूढ़िवादी प्रशासक परंपरा में विश्वास करते हैं। ये समस्याओं के समाधान के लिए नवीनता में विश्वास नहीं करते। उदारवाद प्रशासक समस्याओं के मूल में जाता है और उनके समाधान का प्रयास करता है। कुशल प्रशासक समन्वय समायोजन के द्वारा अपने व्यवहार का निर्धारण करता है। छ परिवर्तन चेंज। परिवर्तन के प्रति कर्मचारियों का झुकाव प्रशासक को प्रभावित करता है। सामान्यतः शैक्षिक कर्मचारी परिवर्तन को स्वीकार करते हुए इसलिए हिचकते हैं कि उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। कुशल प्रशासक परिवर्तन के अनुरूप शैक्षिक प्रक्रिया को अपनाने में कर्मचारियों को सहयोग देता है। दूसरा योग्यताएं एबिलिटीज। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं। इन भिन्नताओं तथा योग्यताओं की पहचान करके तदनुरूप कर्मचारियों से कार्य लेना ही प्रशासक की योग्यता है। योग्यता से संबंधी कारक इस प्रकार हैं। पहला क शारीरिक योग्यताएं फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज। शिक्षा की प्रक्रिया में लगा प्रत्येक व्यक्ति स्वयं शारीरिक क्षमता के अनुरूप कार्य करता है। साथ ही प्रत्येक कर्मचारी का आत्मबल स्टैमिना भी निर्मित होता है। अतः सत्र के आरंभ में उनके आत्मबल, शारीरिक क्षमता आदि को पहचान कर जो शिक्षा प्रशासक कार्य करता है वह अपने उद्देश्यों में सफल होता है। ख बौद्धिक योग्यताएं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, प्रत्येक व्यक्ति में कतिपय बौद्धिक योग्यताएं तथा क्षमताएं होती हैं। बौद्धिकता ही शैक्षिक प्रशासन के चरित्र का निर्माण करती है। इसी के आधार पर प्रशासक तथा कर्मचारियों के बीच उच्च तथा निम्न स्तरीय संबंध होते हैं। सामान्य बौद्धिक योग्यता वाले प्रशासकीय समूह में केवल लकीर की फकीर का निर्वाह किया जाता है। जहाँ पर कर्मचारियों के उच्च स्तर का प्रश्न है, वह आत्मनिर्देशन यानी कि सेल्फ डायरेक्शन के कारण विकसित होता है। ग, आलोचना, आत्म चेतना, सेल्फ अवेयरनेस। शैक्षिक प्रशासन अपने साथियों, कर्मचारियों तथा अधीनस्थों की क्षमताओं के बारे में जानकारी रखता है। वह उतना ही उनकी शक्तियों का उपयोग करता है। प्रशासन की आत्म चेतना यानी कि सेल्फ अवेयरनेस प्रवृत्ति के कारण प्रशासन की गुणवत्ता विकसित होती है। घ, व्यावसायिक ज्ञान तथा कौशल, प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। आज के युग तथा शिक्षा के दर्शन, सिद्धांत, शिक्षा विज्ञान तथा कला के विषय में इतना ज्ञान संचित हो चुका है कि वह कुशल शिक्षा प्रशासक के लिए अनिवार्यता हो गई है। भवन निर्माण, शिक्षण सामग्री का शिक्षण अधिगम में प्रयोग, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि का ज्ञान तथा कौशल उसमें होना आवश्यक है। शिक्षा प्रशासन को चाहिए कि कर्मचारियों के शैक्षिक तथा तकनीकी ज्ञान को समन्वित करे। जिन लोगों को तकनीकी ज्ञान नहीं है, उन्हें व्यावसायिक मामलों से दूर रखें। इस ज्ञान को कार्य रूप में परिमित करके कौशल विकसित करना चाहिए। हमारे देश में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, जबकि आवश्यकता उन्हें शिक्षित यानी कि एजुकेटेड करने की है। शिक्षकों के विषय ज्ञान के साथ साथ सामान्य शिक्षा की विस्तृत पृष्ठभूमि भी होनी चाहिए। च, निदानात्मक योग्यता, डायग्नोसिस एबिलिटी। शैक्षिक प्रशासन में निदानात्मक योग्यता तथा क्षमता का होना आवश्यक है। इस कारक के कारण ही वह अनेक विषय समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसमें विभिन्न परिस्थितियों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। जनता का सहयोग, अभिभावकों की सहभागिता, साधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न विचारों के व्यक्तियों की कार्यशैली आदि का उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये सभी तथ्य शैक्षिक संभावनाओं यानी कि एजुकेशनल पोटेंशियल के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा प्रशासक को सामाजिक दशाओं, स्थानीय दबाव समूहों, लोकल प्रेशर ग्रुप्स, उपलब्ध साधनों के बारे में जानकारी तथा उनके उपयोग की कुशलता आनी चाहिए। छ, समस्या समाधान आयाम, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। शिक्षा प्रशासक के समक्ष सदैव अनेक समस्याएं विद्यमान रहती हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यकताओं का सतत निर्धारण, समाधान स्रोतों का मूल्यांकन एवं समस्या समाधान के लिए उपयुक्त विधियों के विषय में सतत प्रयोग होना चाहिए। समस्या का समाधान करने के लिए कर्मचारी मंडल एवं शिक्षकों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। शिक्षा प्रशासन को समस्या समाधान करने के लिए उत्तम नियोजन, संबंधित व्यक्तियों के साथ अहम का लगाव, इन्वॉल्वमेंट, विस्तृत एवं उत्तम साधन उपयोग एवं उच्च स्तरीय निष्पत्ति की भावना होनी चाहिए। प्रशासकीय योग्यता, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। कुछ प्रशासक पहले कार्य करते हैं और फिर उसके बारे में सोचते हैं और अपने कार्य का औचित्य सिद्ध करते हैं। ऐसा कभी कभी हो सकता है, परंतु यह प्रवृत्ति प्रशासक का सबसे बड़ा दुर्गुण है। प्रशासक को प्रभावशाली प्रशासन हेतु इन प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। पहला, कार्यकर्ताओं के समक्ष उद्देश्य का प्रस्तुतीकरण। दूसरा, वांछित शैक्षिक लक्ष्यों के संदर्भ में दीर्घकालीन तथा विस्तृत कार्य योजना का स्पष्ट रूप से निर्माण। तीसरा, वर्तमान दशाओं में उपलब्ध साधनों के अनुसार उद्देश्य प्राप्ति हेतु क्रियाओं का संगठन। चौथा, साधनों को एकत्र करके कार्यकर्ताओं का सहयोग, परिस्थितियों के समन्वय के साथ क्रियान्वयन। पांचवा, निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में विधि, प्रक्रिया तथा निष्पत्ति का मूल्यांकन करना। तीसरा, सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, सोशल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रशासन के गुणों में प्रमुख, प्रशासक द्वारा परिस्थिति क्रियाकलापों का प्रतिबोध, प्रशासक स्वयं को तथा अपने साथियों और कर्मचारियों को किस सीमा तक समझता है, वह किस सीमा तक अपने अधीनस्थों को कार्य हेतु प्रेरित करता है आदि तथ्य उसकी मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं। संकट काल में उत्पन्न परिस्थितियों में सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों का सहारा लिया जाता है। संकट के समय क्रोध की अभिव्यक्ति, समझौता, आलोचना का भय आदि शिक्षा प्रशासन को बर्बाद करते हैं, जबकि पहल करना, इनिशिएटिव, कठिन है। संकटपूर्ण स्थिति में साधनों का संपूर्ण उपयोग सृजनात्मकता, शक्ति, प्रभाव, प्रशासन को प्रभावशाली बनाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो प्रशासनिक व्यवहार को निर्धारित करते हैं, वो इस प्रकार हैं। क, क्षमता, सक्षमता, विटैलिटी। शिक्षा प्रशासक तथा शिक्षकों का कार्य अत्यंत श्रम साध्य है। अत्यधिक श्रम मानसिक दबाव तथा थकान पैदा करता है। इसका प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ता है। शिक्षण अधिगम के साथ साथ अन्य बहुत सी गतिविधि क्षमता शक्ति के द्वारा थकान तथा तनाव दूर किए जा सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षमता शक्ति को विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ख अभिप्रेरणा मोटिवेशनल शैक्षिक लक्ष्य समाज के विकास तथा अभिवृद्धि के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। वांछित पारिश्रमिक प्राप्त करने के आर्थिक प्रेरक। दूसरा कार्य की स्वतंत्रता आत्म अभिव्यक्ति के अवसर आत्म विकास सृजनात्मक कार्य तथा परिणाम के प्रति संतोष जैसे मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तीसरा समूह संबंध सामुदायिक जीवन समान तथा स्तर जैसे सामाजिक प्रेरक प्रशासनिक व्यवहार के शक्तिशाली तथा प्रभावशाली प्रेरक हैं। ग प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन अच्छा प्रशासक अपनी क्षमता तथा दुर्बलता को जानता है। उसे अपने ज्ञान कौशल तथा योग्यताओं की सीमा की जानकारी भी होती है। उसे अपनी इच्छा आकांक्षा भावना प्रेरणा संतोष के स्रोत का ज्ञान होता है और वह यह भी जानता है कि उनका उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। प्रशासनिक व्यवहार के निर्धारण में प्रशासक की अपेक्षा तथा कार्यकर्ताओं के व्यवहार का योग होता है। प्रशासक को कार्य की दशाओं सामाजिक परिस्थितियों कर्मचारियों की मनस्थिति तथा वास्तविकताओं आदि का ज्ञान होता है। घ संवेदनात्मक स्थिरता इमोशनल स्टेबिलिटी शिक्षा में अमूर्त अधिगम एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग का विकास होता है और जीवन से पृथक होने के कारण व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है। यह संवेदनशीलता उसे संवेदनात्मक रूप से अस्थिर बनाती है। कुशल प्रशासक को तनाव हताशा भय चिंता से मुक्त होना चाहिए। इससे उनका प्रशासनिक व्यवहार व्यवस्थित हो सकेगा और नियंत्रण के कारण उसमें क्षमता का विकास होगा। च अधिनियमों का अनुपालन एडहेरेंस टू प्रिंसिपल शिक्षा प्रशासक को व्यक्तिगत निष्ठा चापलूसी या पूर्वग्रह के आधार पर निर्णय नहीं लेने चाहिए। उसे नियमों तथा सिद्धांतों के आधार पर निष्पक्ष होकर निर्णय लेना चाहिए। छह दूरदर्शी लक्ष्य लॉन्ग रेंज गोल शिक्षा प्रशासन के शैक्षिक कार्यों की प्राथमिकता देनी चाहिए। समस्याओं का आभास करके उनका समाधान करना चाहिए। इसलिए दूरदर्शिता का सहारा लेकर शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए। जब सामाजिक गुण सोशल क्वालिटी शिक्षा प्रशासकों के कार्य उद्योग तथा व्यापार से भिन्न होते हैं। शिक्षा कार्यकर्ता शिक्षक के अलावा अपने कर्तव्य को अन्य क्षेत्रों में भी निर्वाह करता है। शिक्षा प्रशासक को चाहिए कि वह शिक्षा को सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में विकसित करे। सद्भावना सामुदायिक कार्य सामाजिक संबंध आत्मविश्वास आत्मबोध तथा सहनशीलता आदि गुण प्रशासनिक व्यवहार का निर्धारण करते हैं। शैक्षिक प्रशासन के पर्यावरणीय कारक एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कोई संस्था या संगठन अपने परिवेश से पृथक होकर कार्य नहीं कर सकता है। शिक्षा प्रशासन का संबंध भी किसी व्यक्ति विशेष देश काल तथा परिस्थिति से संबंधित रहता है। शिक्षा तथा उसके प्रशासक पर अनेक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक संस्थागत तथा अन्य अनेक शक्तियों का दबाव पड़ता है। इस तरह वातावरणीय कारक शिक्षा प्रशासन को अनेक रूपों में प्रभावित करते हैं। वातावरणीय कारकों में प्रमुख है सामाजिक रीतियां समुदाय का चरित्र तथा सरकार की प्रवृत्ति। हम इन कारकों पर विचार कर रहे हैं। पहला सामाजिक रीतियां सोशल कस्टम समाज के कार्यों का आधार उसकी प्रथाएं तथा रीति रिवाज हैं। समाज की आकांक्षाओं का निर्माण इन प्रथाओं तथा रीति रिवाजों से होता है। वातावरणीय कारक विद्यालय तथा शिक्षा प्रशासन दोनों को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार शिक्षा तथा विद्यालय भी बदलते परिवेश में शिक्षा प्रशासन परिवर्तित करते हैं। सामाजिक रीतियों के अंतर्गत इन कारकों का अध्ययन किया जाता है। क शैक्षिक मूल्य एजुकेशनल वैल्यूज जैसे शैक्षिक मूल्य होंगे वैसी ही विद्यालयों तथा समुदाय की अपेक्षा आकांक्षा होगी। यदि समुदाय की यह इच्छा है कि विद्यालय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करे तो शैक्षिक कार्यक्रम चेतना राजनीतिक जागृति सांस्कृतिक नवचेतना और प्रजातांत्रिक मूल्य विकसित हों तो समानता स्वतंत्रता तथा सामाजिक दृष्टि से पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जाएंगे। ख नेतृत्व संरचना लीडरशिप स्ट्रक्चर समाज तथा समुदाय की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु शैक्षिक नेतृत्व की संरचना होती है। समुदाय की प्रकृति के अनुसार ही नेतृत्व की प्रकृति का विकास होता है। आर्थिक स्थिति या राजनीतिक शक्ति से निर्धारित नेतृत्व के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन तथा कार्यक्रम एक ढंग से होंगे। यदि नेतृत्व धर्म संस्कृति बौद्धिकता से प्रभावित होगा तथा शैक्षिक प्रशासन तथा कार्यक्रम का स्वरूप द्वारा होगा। ग मानवीय तथा भौतिक संस्थान ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज समुदाय में उपलब्ध भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा तथा उसके प्रशासन पर पड़ता है। इनका उपयोग समुदाय की आकांक्षाओं के अनुसार किया जाता है। शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर स्थानीय संसाधनों के उपयोग तथा अनुपयोग का सीधा प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र के अनुसार शैक्षिक वातावरण पर मानवीय तथा भौतिक संसाधन प्रभाव डालते हैं। घ, प्रबंधन का स्तर, स्टेटस ऑफ मैनेजमेंट। प्रत्येक विद्यालय का संचालन संस्था या व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। इस संस्था तथा व्यवस्था के सदस्यों का सामाजिक आर्थिक स्तर शिक्षा प्रशासन के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। समाधान संपन्न व्यक्ति विद्यालय की प्रगति के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं और भ्रष्ट व्यक्ति विद्यालयों को अपनी रोजी रोटी का साधन बना लेते हैं। तीसरा, सामुदायिक विशेषताएं, कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। व्यक्ति के मूल्य तथा विकास के समुदाय के चरित्र का निर्माण होता है। यही सामुदायिक चरित्र शैक्षिक प्रशासन का निर्माण करता है, प्रशासनिक व्यवहार का निर्धारण करता है। सामुदायिक दायित्व चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। क, पारिवारिक जीवन की गुणात्मकता, क्वालिटी ऑफ फैमिली लाइफ। शिक्षा तथा समाज की आधारभूत इकाई परिवार है। व्यवहार तथा व्यक्तित्व का पहला पाठ परिवार में ही बालक पढ़ता है। परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला है। आंतरिक गुणों का विकास, भाषा का तात्विक ज्ञान, आत्म अभिव्यक्ति की शैलियाँ बालक परिवार में ही सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया से बालक परिवार में ही गुजरता है। इसके बाद बालक विद्यालय में जाता है। विद्यालय विस्तृत परिवार एक्सटर्नल फैमिली कहलाता है, एक्सटेंडेड फैमिली कहलाता है। समुदाय के परिवार के जीवन की गुणात्मकता के अनुसार शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक कार्यक्रमों की रचना करते हैं। शिक्षा की समस्याओं को हल करने तथा कार्यक्रम बनाने में शिक्षा प्रशासन परिवार तथा समुदाय का सहयोग लेते हैं। समुदाय की प्रकृति, नेचर ऑफ कम्युनिटी। समुदाय की प्रकृति का निर्धारण राष्ट्रीय संस्कृति, प्रजाति, आयु, जनसंख्या की प्रकृति, जीवन की आकांक्षा, सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक स्तर, जीवन स्तर, औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन, विभिन्न व्यवसाय तथा पेशे, यातायात, संचार साधन, मनोरंजन आदि के द्वारा होता है। इन कारकों में पाई जाने वाली भिन्नता तथा होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा प्रशासन पर पड़ता है। ग, भौतिक संसाधन, फिजिकल मटेरियल रिसोर्सेज। जलवायु, समुद्र तल से ऊंचाई तथा दूरी, नदियों की समीपता, स्थानीय व्यवसाय, उद्योग, व्याख्या, सड़क, रेल, संचार साधन आदि का सामुदायिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव शैक्षिक प्रशासन को प्रभावित करता है। घ, संस्थाएं एवं संगठन, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी समुदाय की संस्थाओं तथा संगठनों की संरचना के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों की रचना की जाती है। बार एसोसिएशन, शिक्षक संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्रम संगठन, राजनीतिक दल, औद्योगिक तथा अन्य संस्थाओं का प्रतिबिंब होता है। समुदाय के स्वस्थ कार्यक्रमों को विद्यालयों में तथा विद्यालयों के स्वस्थ कार्यक्रमों को समुदाय में अपनाना चाहिए। च, शक्ति संघर्ष, पावर कॉन्फ्लिक्ट। समुदाय संघर्ष युक्त भी होते हैं और सहयोगशील भी। इन सभी का केंद्र बिंदु शक्ति है। सामाजिक तनाव, शक्ति के लिए संघर्ष, दलबंधी आदि। यदि कोई समुदाय पीड़ित है तो उसके शैक्षिक संगठन तथा प्रशासन उससे पृथक नहीं रह सकते। सहयोग, प्रयास, समन्वय, आशा आदि से युक्त समुदाय की आकांक्षाएं भी ऊंची होती हैं। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रशासन का प्रयोग करते हैं। रेमंड तथा डेठी के शब्दों में, किसी समुदाय में शक्ति के स्रोत तथा उसका उपयोग विद्यालय प्रशासन द्वारा सतत अध्ययन का विषय है। वह समुदायों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ आउटसाइड कम्युनिटीज। पृथक समुदाय यानी कि आइसोलेटेड कम्युनिटी अब भूतकाल के विषय हो गए हैं। यातायात, संचार तथा अन्य साधनों ने सक्षम तथा दूरी को समाप्त कर दिया है। अब रूढ़िवादी समुदायों की संख्या बहुत कम है। आजकल प्रत्येक समुदाय एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे को प्रभावित करता है। जीवन की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। औद्योगिक तथा व्यापारिक भागों में लोग अत्यंत दबावपूर्ण जटिल जीवन व्यतीत करते हैं। कस्बे तथा गाँवों में दबावहीनता के कारण जीवन सरल होता है। शिक्षा प्रशासकों पर समुदाय की इस जटिल तथा विषम परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इससे शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रभावित होता है। तीसरा, राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टेट। वातावरणीय कारकों में शिक्षा प्रशासन को प्रभावित करने में राज्य की प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा प्रशासन की संरचना तथा कार्यक्रम का निर्धारण होता है। राज्य की प्रकृति के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु विचारणीय है। सरकार की प्रकृति, नेचर ऑफ गवर्नमेंट। सत्तात्मक तथा प्रजातांत्रिक दो प्रकार की सरकारें आज के युग में पाई जाती हैं। एक तंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र आदि सत्तात्मक हैं, जिनमें शक्ति एक या कुछ व्यक्तियों के हाथों में होती है। प्रजातंत्र में शक्ति का केंद्र बिंदु मतदाता है। सत्तात्मक सरकारों प्रशासन पर राज्य की आशा आकांक्षा के अनुरूप शिक्षा प्रशासक कार्य करते हैं। प्रजातंत्र में सक्रिय लोकप्रिय बौद्धिक सहभागिता के बिना कार्य नहीं चल पाता। सत्तात्मक सरकारों में शिक्षा तथा प्रशासन में एक रूपता पाई जाती है। प्रजातांत्रिक सरकारों की शिक्षा पद्धति तथा प्रशासन के व्यक्तिगत भेदों, स्थानीय आवश्यकताओं तथा समुदाय की मांग के अनुसार कार्य किया जाता है। सरकार के कार्य फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। प्रजातंत्र में शिक्षा का महत्व दायित्व सरकार तथा स्थानीय समुदाय पर है। शिक्षा संस्कृति के संरक्षण तथा प्रगति का सशक्त माध्यम है। सरकार इसके लिए कानून बनाती है, नियोजन मार्गदर्शन निर्देशन करती है, विद्यालय तथा समुदाय के शैक्षिक विकास के लिए स्वतंत्र छोड़ती है। विद्यालय अपनी कार्यक्रम बनाते हैं और उनको चलाते हैं। राज्य तथा स्थानीय समुदाय अपने लिए जो करते हैं, शिक्षा प्रशासन उनकी आस्था तथा आकांक्षा से प्रभावित होता है। ग वित्तीय प्रावधान फाइनेंशियल प्रोविजन। शिक्षा बजट व्यय, शिक्षकों तथा कर्मचारियों की आपूर्ति, आय व्यय संप्रेषण, ऑडिटिंग, शिक्षा लागत व्यय, सरकार तथा व्यक्तियों द्वारा इस व्यय की व्यवस्था आदि शिक्षा प्रशासकों की गुणात्मकता यानी कि क्वालिटी तथा मात्रात्मकता यानी कि क्वांटिटी को प्रभावित करता है। घ शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान। राज्य के कानून नियम उपनियम आदि का शिक्षा के नियंत्रण पर्यवेक्षण संगठन शिक्षा के दिशा निर्धारण एवं शिक्षा प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है। यदि राज्य समाज को सुविधाएं देता है तो राज्य का नियंत्रण बढ़ जाता है। संकीर्ण स्थिर तथा कठोर शिक्षा प्रशासन हमें प्राप्त होता है। दूसरी ओर यदि राज्य केवल रूपरेखा प्रदान करता है और शेष समुदाय तथा समाज पर छोड़ता है तो शिक्षा प्रशासन में नमनीयता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी तथा उत्पादकता पाई जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि शिक्षा प्रशासन पर पड़ने वाले व्यक्तिक एवं वातावरणीय कारकों पर दूरगामी प्रभाव होता है। शिक्षा प्रशासन की समस्याएं प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में शिक्षा प्रशासन की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षा के प्रशासनिक प्रारूप के अंतर्गत लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है। दूसरा, शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा शैक्षिक कार्य को तो सामान्य रूप से करना चाहता है लेकिन शिक्षा की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। तीसरा, भिन्न भिन्न मंत्रालय शिक्षा के अनेक कार्यक्रमों का संचालन करते हैं लेकिन ऐसे करने से इन मंत्रालयों को शिक्षा मंत्रालय के साथ शैक्षिक नीति एवं कार्यों का संचालन करने में कठिनाई अनुभूत होती है। चौथा, भिन्न भिन्न मंत्रालयों द्वारा शिक्षा के कार्यक्रमों का संचालन करने से उनमें दोहरापन आ जाता है। यह दोहरापन शिक्षा के अपव्यय की ओर इंगित करता है। पांचवा, शिक्षा संचालकों एवं शिक्षा सचिवों के मध्य संतुलन यानी कि सामंजस्य का अभाव भी शैक्षिक प्रशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है। समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव। उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने हेतु मुदालियर कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला, शिक्षा की सामान्य नीतियों के निर्धारण में शिक्षा संचालक के सभापतित्व में माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। दूसरा, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालयों के मंत्री तथा एक परिषद का निर्माण करें। इस परिषद का कार्य होगा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित शैक्षिक कार्यों की योजना बनाना। तीसरा, भारत की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन का केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा किया जाए और इस परिषद द्वारा प्रस्तुत सुझावों को लागू किया जाए। चौथा, जिला विद्यालय निरीक्षक शैक्षिक समस्याओं के प्रति सदैव जागरूक रहें। पांचवा, शिक्षक संचालक उप शिक्षा सचिव के पद पर भी कार्य करें जिससे वह अपने कार्यों का संचालन शिक्षा मंत्री की सलाह से उचित प्रकार से कर सके। कोठारी कमीशन ने इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। पहला, शिक्षा परिषद का निर्माण राज्य स्तर पर किया जाए जिसका कार्य मंत्रालय के कार्यों का मूल्यांकन करना हो। दूसरा, अराजपत्रित कर्मचारी हेतु सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किया जाए। तीसरा, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा अधिनियम बनाया जाए और उस अधिनियम के अनुसार ही शिक्षा प्रशासन की पुनर्व्यवस्था की जाए। चौथा, राज्य को शिक्षा विभाग से 50% व्यक्तियों की पदोन्नति करके शिक्षा मंत्रालय में लेने चाहिए जिससे संपूर्ण देश की संपूर्ण समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके क्योंकि ये सभी व्यक्ति अपने अपने प्रदेश की शैक्षिक समस्याओं से अवगत होंगे। पांचवा, शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु स्टाफ कॉलेज खोले जाए। छठा, भारतीय शिक्षा सेवा का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए। इस सेवा के अधीन संचालक जिला स्तर के अधिकारी केंद्र एवं प्रदेश के शिक्षालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के पद हों। सातवां, भारतीय शिक्षा सेवा के समान ही राज्य में भी राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। जिला स्कूल परिषद के सचिव जिला निरीक्षक एवं शिक्षकों के पदों को इस सेवा के प्रथम श्रेणी के पदों के अंतर्गत समाविष्ट किया जाए। इनमें से 25% नियुक्तियां पदोन्नति के आधार पर ही और 75% नियुक्तियां सीधे की जाएं। अधिगम अभ्यास लर्निंग एक्सरसाइज। मैं पहला तिरछा प्रशासन के कारकों को बताइए तथा वातावरणीय कारकों का वर्णन कीजिए। दूसरा शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता एवं उपयोगिता बताइए और शिक्षा प्रशासन के कार्य बताइए। तीसरा शिक्षा प्रशासन में प्रधानाचार्य के कार्यों को बताइए। चौथा शिक्षा प्रशासन के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आधुनिक युग के शिक्षण प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख भी कीजिए। पांचवा शिक्षा प्रशासन के प्रकार एवं प्रकृति को बताइए। छठवां एक तंत्र शिक्षा प्रशासन तथा प्रजातंत्रात्मक शिक्षा प्रशासन में अंतर बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला आधुनिक युग में शिक्षा प्रशासन की विशेषताओं को बताइए। दूसरा शिक्षा प्रशासन की प्रमुख आवश्यकता एवं उपयोगिता बताइए। तीसरा शिक्षा प्रशासन के मुख्य कारकों को बताइए। चौथा शिक्षा प्रशासन के कार्यों को गिनाइए। पांचवा शिक्षा प्रशासन के प्रधानाचार्य के कार्यों को बताइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसमें पहला है शिक्षा प्रशासन के पारस्परिक युग में सबसे अधिक योगदान रिक्त स्थान का है। दूसरा आधुनिक शिक्षा प्रशासन की देन रिक्त स्थान है। तीसरा एक तंत्र शिक्षा प्रशासन तथा प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन द्वारा शिक्षा प्रशासन की रिक्त स्थान का बोध होता है। चौथा शिक्षा में समानता और स्वतंत्रता रिक्त स्थान शिक्षा प्रशासन में दी जाती है। पांचवा शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता शैक्षिक रिक्त स्थान प्राप्ति के लिए होती है। छठवां नियोजन व्यवस्था नियंत्रण तथा मूल्यांकन रिक्त स्थान के मुख्य कार्य हैं। कुंजी पहले के लिए मैक्स वेबर, दूसरे के लिए प्रणाली विश्लेषण, तीसरे के लिए प्रकृति, चौथे के लिए प्रजातांत्रिक, पांचवें के लिए उद्देश्यों, छठवें के लिए शिक्षा प्रशासन। सत्य असत्य प्रश्न ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। पहला आधुनिक शिक्षा प्रशासन का प्रारूप मैक्स वेबर ने दिया है, सत्य या असत्य। दूसरा प्रणाली विश्लेषण आयाम आधुनिक युग की देन है, सत्य या असत्य। तीसरा समानता एवं स्वतंत्रता एक तंत्र शिक्षा प्रशासन की देन है, सत्य या असत्य। चौथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षा प्रशासन द्वारा की जाती है, सत्य या असत्य। पांचवा एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में प्रधानाचार्य की भूमिका अहम होती है, सत्य या असत्य। छठवां शिक्षा नियोजन व्यवस्था मूल्यांकन शिक्षा प्रशासन के मुख्य कार्य होते हैं, सत्य या असत्य। कुंजी पहले के लिए असत्य, दूसरे के लिए सत्य, तीसरे के लिए असत्य, चौथे के लिए सत्य, पांचवें के लिए असत्य, छठवें के लिए सत्य। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में अहम भूमिका होती है, अ अध्यापकों की, ब प्रधानाचार्यों की, स दोनों की, द कोई भी नहीं। दूसरा प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन मुख्य विशेषता है, अ समानता, ब स्वतंत्रता, स सार्वभौतिकता, द उपरोक्त सभी। तीसरा शिक्षा प्रशासन के कारक हैं, व्यक्तिगत कारक, दूसरा वातावरणीय कारक, स दोनों प्रकार, द कोई नहीं। चौथा प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य होता है, अ शिक्षा की व्यवस्था, ब प्रशासनिक कार्य, स वित्तीय आलेख, द उपरोक्त सभी। पांचवा पारस्परिक शिक्षा प्रशासन की देन है, अ कार्य विश्लेषण, ब संगठन की संरचना, स दोनों की, द कोई भी नहीं। छठवां शिक्षा प्रशासन में प्रणाली विश्लेषण देन है, अ आधुनिक युग की, ब परंपरागत युग की, स दोनों की, द किसी की भी नहीं। सातवां शिक्षा प्रशासन के मुख्य कार्य हैं, अ व्यवस्था करना, ब नियोजन करना, स नियंत्रण करना, द उपरोक्त सभी। आठवां शिक्षा प्रशासन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अ वातावरणीय कारक, ब व्यक्तिगत कारण, स दोनों ही, द कोई नहीं। नौवां वातावरणीय कारक हैं, अ शैक्षिक मूल्य, ब सामाजिक रीतियां, स प्रबंधन का स्तर, स उपरोक्त सभी। दसवां व्यक्तिगत कारक है प्रशासनिक योग्यता, ब समस्या समाधान की क्षमता, स मानसिक योग्यता, द उपरोक्त सभी। कुंजी पहले के लिए स, दूसरे के लिए द, तीसरे के लिए स, चौथे के लिए द, पांचवें के लिए स, छठवें के लिए अ, सातवें के लिए द, आठवें के लिए स, नौवें के लिए द, दसवें के लिए द।